اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب اگلی آیت پہ چلیں گے جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ چاروں طرف اتنا بگاڑ ہے، ہماری کوششوں سے کیا ہوگا، کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ لوگ دین کی روح کو سمجھ سکے. کیا آپ کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے؟ میرے دل میں تو دن بدن یہ بڑھتی جا رہی ہے کہ کس طرح سے پوری دنیا میں مسلمانوں کا جو زوال ہے اس کو ہم عزت اور ترقی میں بدلیں. تو اس کا طریقہ کار ہے، اہم آیت ہے، اس لیے اب آپ سب کی بہت زیادہ توجہ چاہیے اور آپ ارد گرد سے بے نیاز ہوں. اس وقت توجہ بٹے گی تو آپ کا اپنا نقصان ہوگا. آیت 122، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور اہل ایمان کے لیے یہ تو ممکن ہی نہیں کہ وہ سارے کے سارے ہی نکل جائیں. غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والوں کے اوپر اتنی پکڑ ہوئی کہ اس کے بعد یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ اس کے بعد جب جنگ کا حکم ہوگا تو سارے ہی نکل پڑیں گے. اب جب سارے نکل پڑیں گے تو کچھ باقی کام ہیں جو دوسروں نے کرنے تھے، ان کا کیا ہوگا؟ تو طریقہ بتا دیا کہ میدان جنگ میں جب بھی جانے کا حکم ہو تو اس کے لیے وقت اور حالات کے تقاضوں کا خیال رکھا جائے گا. ابھی عام دنوں میں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فلولا نفرم من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ نکلتا ان کی ہر جماعت میں سے ایک گروہ تاکہ وہ دین کا فہم حاصل کرتے. یہ پہلا سٹیپ ہے، کوما لگا لیجئے. پھر اس کے بعد کیا کرتے جب خود سیکھ جاتے؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور وہ اپنے لوگوں کو خبردار کرتے جب ان کی طرف واپس لوٹ جاتے تاکہ وہ بھی نافرمانی سے بچتے رہیں. اس آیت کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسی صورت کے اندر پیچھے آیت نمبر 97 کہ العراب اشد، عراب زیادہ شدید ہیں کفر اور نفاق میں، اور ان کے بارے میں اس چیز کے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھیں گے. یاد آ گئی آپ کو آیت؟ وہاں ہم نے دیکھا تھا کہ مدینہ میں رہنے والے لوگوں کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا موقع زیادہ ملا، لوگوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ سے فائدہ اٹھایا. لیکن اس کے برعکس جو گرد گرد کے دیہات تھے جہاں بدو اور غریب اور کمزور لوگ رہتے تھے، ان تک علم کی بات نہیں پہنچتی تھی. اس وجہ سے ان میں مرض تھا نفاق کا. وہاں بھی یہ بات ہوئی تھی، یا اس کو دہرا لیجئے، کہ علم کی کمی نفاق کا ذریعہ بنتی ہے. انسان کو اپنے فائدے اور نقصان کا پتہ نہیں چلتا. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک طریقہ کار بتا دیا کہ کیا دیہاتوں اور بستیوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسا نہیں کیا جائے گا، بلکہ کیا کیا جائے گا اس کو تھوڑا سا ہم ترتیب سے سمجھتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں. آپ دیکھیے کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا سورۃ الاعراف میں بھی، اور آگے بھی بہت جگہ پڑھیں گے، کہ نبی جو ہیں وہ بڑے شہروں میں بھیجے جاتے تھے، بڑی بڑی بستیوں میں، بڑے بڑے شہروں میں، کیونکہ وہاں کے لوگ اگر ٹھیک ہو جائیں، سیدھے راستے پہ آ جائیں، تو باقی لوگ چونکہ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب جب بڑے شہروں میں نبی آئیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ جو لوگ کام کریں گے، جو ان سے فیض حاصل کریں گے، وہ بھی وہیں کے لوگ ہوں گے. تو دین اوپر کی سطح پہ تو پھیلے گا. اس کو آج کے دور میں آپ یوں سمجھیے کہ ہم جب اپنے ارد گرد اپنے ماحول پہ نظر ڈالتے ہیں تو مثال ہے کہ کراچی شہر لے لیجئے، لاہور لے لیجئے، اسلام آباد لے لیجئے، صرف معروف شہر ہیں اس لیے نام لے رہی ہوں. ان شہروں میں دنیاوی پڑھے لکھے لوگوں کی کثرت ہے، دولت مند بھی ادھر زیادہ ہوں گے، انٹلیکچوئل بھی ہوں گے. عموماً دین کو جب لوگ پریزنٹ کرتے ہیں تو انہی جگہوں پہ دین کا کام بھی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے، دین کی جگہ بن جاتی ہیں. اسی طرح سے ادھر لوگوں کا انٹلیکٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ تھوڑے سے وقت میں بھی کوئی بات سمجھے تو سیکھ لیتے ہیں. اب ہوا کیا کہ کراچی، لاہور اور اسلام آباد، یہ تین شہر تو بن گئے آئیڈیل سٹیز. یہاں کے لوگوں کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دین کی بنیادی چیزیں، اللہ کی عدد سب پتہ چل گئیں. اب باقی شہروں کا کیا ہوگا؟ مثال ہے کہ کوئی مضافات کے علاقے سوچیے، چھوٹے چھوٹے گاؤں سمجھ لیں. مثال ہے کہ آپ دیکھیں سببز جو ہوتے ہیں، جیسے مثال ہے کہ اگر راہ والی ہے، اب یہ جو چھوٹے شہر ہے جس کو آج کے دور میں آپ پاکستان کے دیہات کہیں گے، وہاں دین کیسے پہنچے؟ सवाल ये पैदा होता है, आप सोचिए कि नबी सल्लम के दौर के जो बद्दू थे ना वो देहाती थे। अब आप और मैं, मिसाल है कि आप यहाँ से पढ़ के निकले, आपने यहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया, कराची में जो पढ़ते हैं वो कराची में पढ़ाएंगे, लाहौर वाले लाहौर में पढ़ाएंगे, तो ये साइड के जो सबर्ब्स या छोटे इलाके हैं इन तक दीन कैसे जाएगा। और एक बात जहन में रखिएगा कि जब तक इल्म का पानी सोसाइटी की ग्रॉस रूट को नहीं जाएगा ना, चेंज नहीं आएगी। यानी हम बाहर देखते चंद बड़े चेहरे हैं जो माशरे में फसाद पैदा करते हैं, मिसाल है कुछ आर्ट के नाम पे, कुछ सियासत के नाम पे, कुछ मज़हब के नाम पे, हम कहते हैं इन चंद लोगों को ठीक कर लो बाकी सब ठीक होंगे। हालांकि अगर आप रियलिटी से फैक्ट्स देखिए तो पाकिस्तान के देहातों में ज़्यादा आबादी है, कसरत भी ज़्यादा है, दूसरी बात नमाज भी नहीं पढ़ते, हराम हलाल का नहीं पता। तो आप शहरों के चंद 10-20% लोगों को दीन सिखा के भी चेंज नहीं पैदा कर सकते जब तक इर्द गिर्द रहने वाले देहातों में जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं उनको दीन की बेसिक समझ ना दें। मसलन आप इसको यूँ समझ सकते हैं जैसे एक पौधा है, आप इमेजिनेशन में लाएं, कोई पौधे के पत्तों पर पानी छिड़कना शुरू कर दे तो क्या उस पौधे पर बहार आएगी? नहीं आएगी ना, कहाँ डालना पड़ेगा? जड़ों में। तो जो मासिस होते हैं ना, कसरत है लोगों की, वो रूट्स हैं। हम पाकिस्तान में इस्लाम लाना चाहते हैं, क्या करें? पाकिस्तान की गली गली कच्ची बस्ती, आप आज इस आयत को पढ़ते हुए बिल्कुल कच्ची बस्ती या गांव या देहात को जहन में ले आए। अब हो क्या, नबी या दीन का काम करने वाले तो बड़े शहरों में रहते हैं, अब सारे देहातियों को बुला ले शहरों में, वो आ नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। उस दौर में अगर सारे बद्दू जमा होकर मदीना में आ भी जाते तो मस्जिद में इतनी जगह नहीं थी। तो उसका यहाँ एक बड़ा खूबसूरत तरीका बताया गया कि कुछ लोग हर बस्ती से निकलें, मिसाल है वाक एंड से कुछ निकलें, कोई टंडू मीर से निकलें, कोई वज़ीराबाद से आएँ, कोई कुछ, वो आके बैठें, अल्लाह के नबी से इल्म सीखें, फिर उसमें खूब अपने अंदर पुख्तगी पैदा करें, खुद सीखें, फिर सिखाना सीखें। गलती बहुत बड़ी आज के दौर में जो बहुत सारे लोगों से हो रही है कि वो सीखने के फौरन बस सिखाना शुरू कर देते हैं। खुद सीखना और बात है, सीखने के बाद सिखाने के बीच में ट्रेनिंग होती है। सीखें, ट्रेनिंग लें, फिर जो जिस बस्ती से आया था वहाँ वापस जाए, फिर अपने मस्जिद, अपने गांव, अपने सबब, अपनी किसी छोटी सी छोनी में वहाँ अपनी हैसियत के मुताबिक दीन का मैसेज देने लगे। ये एक सिंपल सा सर्कल आपको समझ आ गया। आप देखिए कि किसी भी जगह पे जो दीन का काम करने वाले आलिम होते हैं ना, वो दिल की तरह होते हैं। दिल का जिस्म को काम क्या है? खून देना, ऑक्सीजन मिलती है, ब्लड साफ होता है और फिर सारे जिस्म में खून जाता है। अब अगर आप मेरी इस मिसाल को जहन में रखते हुए सोचिए कि आलिम या स्कॉलर्स या टीचर्स जो है ना, वो एक सोसाइटी के अंदर सदर हैं, दिल है। हर बंदे की अप्रोच नहीं है कि उलमाए कराम तक पहुंच सके, और सारे उन तक पहुंचेंगे भी कैसे, और वो सबको अकोमोडेट कैसे करेंगे? तरीक़ेकार क्या है कि उन उलमा से कुछ लोग दीन सीखें, फिर ये नहीं कि थोड़ा दीन इधर थोड़ा इधर, चलते फिरते पिछले 10 साल से बस सीख ही रहे हैं, पता चला कुछ भी नहीं, पहला सारा 10 दफ़ा कर लिया, ये तरीक़ेकार नहीं है। तरीक़ेकार ये है कि बहुत मुख्तलिफ लोगों को सिखाने से थोड़े से लोगों को ज़्यादा अरसा सिखाएं। मिसाल अगर अपने ऊपर लेके मैं मिसाल दे दूं कि अगर मैं कहूं कि हफ्ते में 7 देना है तो मैं 7 डिफरेंट जगहों को चूज़ कर लेती हूँ। हर सैटरडे आपको पढ़ा लूँ, हर संडे मैं समझे बर्मिंघम चली जाऊँ, हर मंडे मैं समझें कि कहीं भी चली जाऊँ, जो भी नाम है शहरों के। अब होगा क्या कि मैंने तो हफ्ते में 7 दिन दीन का काम किया, ठीक है ना, मुझे 7 गुना ज़्यादा लोग मिले, मेरा अजर भी ज़्यादा हुआ, मुझे हर दिन ट्रैवल भी करने का मौका मिला, ठीक है, मेरी शोहरत भी हो गई जिसको मैं कुछ नहीं समझती, लेकिन फी ज़माना लोग एक किसको भी नाम समझते हैं। फिर इसके बाद देखिए कि 7 डिफरेंट जगहों पे जब मैं गई, इधर गई उधर गई, तो मैं कह सकती हूँ मेरी 7 क्लासें, ठीक है। अब इसके साथ एक फितना शुरू हो गया, नफ्स मोटा होता है, नतीजा क्या निकलेगा? हर क्लास जो है वो ऐसी है जैसे एक औरत के 7 बच्चे पैदा हो गए। बहुत बहुत फ़र्क पड़ा तो कोई समझे कि एक क्लास आज शुरू हुई है किसी जगह, तो किसी जगह 15 दिन बाद कर दूंगी, तो दूसरी जगह 1 महीने बाद। ये सारी क्लासों के बच्चे बड़े कब होंगे? ये कुरान कब पूरा करेंगे? ये दीन की अंडरस्टैंडिंग कब लेंगे? जब मेरे दुनिया से जाने का वक्त आ चुका होगा। एक दिन की क्लास जब कुरान सीखते हैं ना हम लोग, जो आम क्लासों में सिखाते हैं, एक रफ एस्टिमेशन है हमारे पास जो लेसन प्लान बनते हैं, वंस अ वीक जो क्लास होती है ना, अगर हम पूरे डिसिप्लिन से चलें, ये नहीं कि पढ़ाने वाला पाकिस्तान गया तो छुट्टी हो गई, और छुट्टियां हो गई तो वो नहीं, वो हज पे गया तो कहते जी मेरी क्लास भी हज पे चली गई पढ़ाने वाले, ये नहीं मैं कह रही, पूरे लेसन प्लान के साथ जब हम वंस अ वीक क्लास लेते हैं ना तो 7 से 8 साल लगते हैं कुरान पूरा होने में, वल्ला ही। और 10 साल को आप एक रिलैक्सिंग रख लें, जो भी 10 साल में क्या कुछ नहीं हो जाएगा। फिर दूसरा नुकसान क्या होता है कि 10 साल में कई लोग आए कई गए, कई पैदा हुए, आपका अपना इंटेलेक्ट ही बदल चुका होता है। 10 साल की बच्ची और 20 साल की बच्ची के सोच में बहुत फ़र्क है। नुकसान क्या हुआ कि मैंने कोई फल नहीं पैदा किया, इसकी बजाय मुझे क्या करना चाहिए, ये आप कुरान बता रहा है कि मैं एक जगह बैठ गई, मैं कहती हूँ कि आप बजाय इसके कि मुझे हफ्ते में 7 दिन कहीं बुलाएं, इस पूरे शहर बल्कि जिधर 7 शहरों में मैंने जाना था, कुछ बर्मिंगम से, कुछ मैनचेस्टर से, कुछ लोग जो हैं बर्लिन से, इधर उधर से 10-10 5-5 लोग आ जाएं, मैं इधर बैठी हूँ, आपका एक ग्रुप इधर का उधर का, और आप मेरे साथ हफ्ते में 7ों दिन पढ़ें। वही कुरान जब का 7-8 साल में पूरा होना था वो 1 साल में पूरा होगा। फिर मैं आप सबको खूब पॉलिश करने की कोशिश करूँ, तज़किया हो आपकी तरबियत, तो फिर आपको ट्रेनिंग सेशंस दिए जाएँ, सिखाया जाए, फिर आपको पूरे रेफरेंसेस दे के जो भी मुमकिन है, फिर आपको बर्मिंगम भेज दिया जाए, आपको मैनचेस्टर भेज दिया जाए, हर बंदा वापस चला जाए अपनी जगह पे, फिर वहाँ इन सारी कोशिशों को मल्टीप्लाई किया जाए, जिसको आप कह सकते हैं फ्रेंचाइजेशन। मैकडोनल्ड सारी दुनिया में एक जैसे, आप थोड़े बहुत फ़र्क के अलावा आपको पहले ही पता होता है वहाँ क्या होगा, कैंटकी चिकन एक जैसी होती है ना। दीन का काम इस तरह से फ्रेंचाइज करके डिसिप्लिन के साथ, सेम रूल्स, सेम रेगुलेशन, सेम सोर्स ऑफ नॉलेज, जब लोगों को इस तरह मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो चेंज जो 7 साल में भी मेरे अकेले से नहीं आनी थी, वो आप सबके मिलने से, अल्लाह के हुक्म से, विद इन 1.5 से 2 साल में आनी शुरू हो जाती है, चेंज आ जाती है। क्योंकि एक जहन सोचता है तो एक सोच है, और जब 60-70-80-90-100 लोग सोचते हैं तो फ़र्क होता है ना। तो अल्लाह के नबी का तरीक़ेकार ये था, आपने लोग तैयार किए, आपकी अपनी ज़िंदगी में लोग तैयार हो गए। मेरी नज़र में किसी उस्ताद की कामयाबी ये नहीं है कि उसको कितने लोग जानते हैं, वो कितना बिजी है, कितनी मीटिंग्स हैं, कितने सफ़र करता है, ये तो हवा वरोला, आज आंखें बंद होंगी 2-4 दिन लोग रोएंगे ख़त्म। असल कामयाबी यह है कि वट एम आई लीविंग बिहाइंड, ये आयत काम करने का एजेंडा दे रही है। कैसे देती है? अल्लाह सुबहान तआला कहते हैं, अब दोबारा इस सोच के साथ जरा सुने, पहले तो आपने तर्जमा से कच्चा पक्का सुना था ना, वमा कानल मोमिन, ये बात तो समझ आ गई ना कि सारे मोमिन नहीं निकलेंगे। लियन फिरू में नफरा किसके लिए निकलना था आपको याद है? जंग के लिए, यानी सारे जंगों में नहीं जाएंगे। देखिए जिहाद की 2 किस्में है ना, एक जिहाद बिल कलम है और एक जिहाद बिल तलवार बिस सैफ है। सारों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती हर वक्त, दोनों को अगर आप टैली करना चाहें ना तो आप देख सकते हैं कि एक वो है जो जंगों में जाके लड़ते हैं लोग, और एक वो है जो इल्मी जिहाद है। दोनों में क्या फ़र्क है? पहली बात अगर आप देखें तो जो जंग की बात है वो हर वक्त तो नहीं होती, जबकि इल्मी जिहाद की ज़रूरत हर जगह। फिर जंग में लड़ने के लिए कुछ ख़ास प्रोटोकॉल चाहिए, मसलन आप देखें कि औरतें जंगों में नहीं जाती, छोटे बच्चों की वहाँ ज़रूरत नहीं होती, जबकि इसके बरक्स इल्म के लिए ना तो उम्र की बात है, ना औरत की बात है, ना मर्द की बात है। तलबुल इल्मी फरीदतु लिकुल्ली मुस्लिम, हदीस के अल्फाज हैं कमोबेश के इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है। जब हम दीन की समझ को, दीन को लेने देने के लिए आम लोगों के लेवल पे आके कोशिशें करेंगे तो ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैदान जंग के लिए तो चंद सिपाही बहुत होते हैं, 8-10 दिन जंग लगती है फिर ख़त्म, लेकिन इल्म का काम हर वक्त का काम है, हर दिन का काम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्का में लोगों को तकरीबन 1/3 कुरान दे दिया था। मक्की कुरान ज़्यादा है मदनी कुरान से, मक्की सूरतें ज़्यादा हैं मदनी सूरतों से। तज़किया हुआ, 13 साल उनकी खूब रगड़ाई हुई, एक पे एक आयत आ रही होती थी कि जो बंदे के अंदर के पोल खोल देती थी। अब जब 13 साल उनकी तैयारी हो गई, नबी सल्लम के पास एक ग्रुप तैयार हो गया लोगों का, चोटें खाए हुए, मारें खाए हुए, घर माल लुटाए हुए, फिर उनसे हिजरत का ट्रेनिंग सेशन करवाया कि भला हम देखते हैं कि तुम अल्लाह के दीन के लिए क्या छोड़ सकते हो। रास्ते की सोबतें तैयार हुई, ये सारे मरहलों के बगैर भी अल्लाह के नबी की अल्लाह मदद कर सकता था। वो फरिश्ते जो बदर के मैदान में उतरे, क्या वो हिजरत के मैदान में नहीं उतर सकते थे? बुराक आता जो उस हिजरत से तकरीबन 1.5 साल पहले अल्लाह के नबी को सिदरतुल मुंतहा तक ले गया, सोचिएगा हिजरत से एक साल सवा साल पहले वाक्य मेराज हुआ था, वो बुराक जो आपको उस वक्त सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैल मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, फिर उधर से ऊपर ले गया, सूरत नजम में हम पढ़ेंगे, पहले सूरह बनी इसराइल में पढ़ा, क्या वो बुराक मक्का से मदीना नहीं ले जा सकता था? एक छुड़ापी मारते मक्का से मदीना आते, लेकिन नहीं, अल्लाह ने नबी के जरिए करके दिखाया किसी जगह दीन का नफास मरहलों से होता है। ये पिछली आयत, कदम भी सहने पड़ते हैं, प्यास भी आती है, भूख भी लगती है, तकलीफ़ें भी सहनी पड़ती हैं, क्योंकि अल्लाह लोगों को तैयार कर रहा होता है कि क्या ये बोझ बर्दाश्त कर लेंगे। उसके बाद मदीना में आने के बाद मस्जिद नबवी की बुनियाद क्यों डाली, कभी आपने सोचा? पीछे ही पड़ी है हमने भी ये बात, क्योंकि टीम तैयार थी, अब एक मरकज़ चाहिए था, और मरकज़ भी ऐसा इंडिपेंडेंट कि जिसके ऊपर किसी का कोई बोझ ना हो, ताकि लोग पैगाम को ना बदलवा दें। मस्जिद नबी बन गई। अब वो कैसी बनी? ये आज वाली मस्जिद नबी थोड़ी थी, छप्पर था, वो भी बन गई। अब तीसरी चीज़ चाहिए थी, लोग भी तैयार हैं, जगह भी तैयार है, अब करना क्या, मेथडोलॉजी क्या है, सिलेबस क्या है? उसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीसा के मदीना के सूरत पे जो एक पूरा प्लेज लिया था वहाँ रहने वाले लोगों को और सहाबे कराम को, बैठकर जो बैत उकबा में ही अल्लाह के नबी ने एक मनसख़त दे दिया था, वो सब जमा करें तो पता क्या चलता है कि दीन का काम सिस्टम के साथ फैलता है। आज दीन बहुत है, तरतीब नहीं है, लोग पढ़ने से पहले पढ़ाने लग जाते हैं, नीम हकीम खतरे जान, ट्रेनिंग लेने से पहले इदारे खोल के बैठ जाते हैं, ऐसे स्टक होते हैं जगह में जाके कि जिसको कहते हैं ना जाए मानत ना पाए मानत, इदारा बना लिए, जामिया बना के बैठ गए। ऐसी मैं मिसालें दूँ ना तो कितना वक्त लग जाए कि आखिर जब 2, 4, 6 साल की कोशिशों में वो लोगों ने चंदे दिए होते हैं, जगह तो बन जाती है, स्टाफ कोई नहीं, लोग कोई नहीं। लिटरली मैं मुबालगे से बचते हुए आपको कह सकती हूँ कि अल्लाह की तौफीक और उसकी रहमत से इस वक्त हम कुछ ऐसी जगहों पे मदद कर रहे हैं, अल्लाह की मदद से हो रहा है तो हमारी उसमें कोई औकात नहीं, कि जिनके पास जगह भी हैं, उनके पास इसबाब भी हैं, लोगों को भी पता, लोग भी हैं, सबसे बड़ी बात है लोग भी होते हैं, काम नहीं कराना आता, और हर वक्त यही रोना धोना कि लोग नहीं आते, आते हैं तो चले जाते हैं, स्टाफ मुतमईन नहीं है, आज तजवीज़ टीचर बीमार हो गई हैं तो आज कुरान टीचर बीमार हैं, तो कभी छुट्टियां कभी कुछ, और मैंने कहा आप दिखाएं पढ़ाते क्या क्या मेथडोलॉजी आपके स्कूल की, कहती वो क्या होती है, वल्लाही। अच्छा जी आपका क्या सिलेबस है, आप 2010 का जो आपका सिलेबस है क्या, कहते कोई पता नहीं ये क्या होता है, भाई आप क्या करेंगे, ये जो कुरान की क्लास पढ़ के निकलेंगे क्या करेंगे, कहती बस ये चल जाएंगे दूसरी क्लास आ जाएगी। तो मैंने कहा इनका क्या होगा, कहती बस आती नहीं, लड़कियां पहले ही थक जाती हैं, एक साल पढ़ के फिर आती नहीं। अल्लाह के बंदो आप फसल तैयार करके उसको पीछे छोड़ के कांटे वगैरह अगली फसल लगा रहे हैं, आपको क्या मिलना है। मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि दुनिया का कोई काम डिसिप्लिन के बगैर नहीं होता, आपकी बिरयानी नहीं पकती जब तक आप सारी चीज़ें पहले ऑर्गेनाइज ना करके रखें, पिछला काम बाद में बात का पहले करें तो होता, प्याजों में पानी डाल दें फिर बाद में उसको ज़रा ब्राउन करने की कोशिश करें, सारी रात भी पकाते रहेंगे वो कभी ब्राउन नहीं होंगे। आज मुसलमानों में ये बहुत ही ज़्यादा ख़राबी आ गई कि हमने दीन का काम, बस दीन का काम रखा, इससे वो फसल नहीं तैयार हो रही जो अल्लाह के नबी के ज़रिए थी। तो अल्लाह कहते हैं अगर चाहते हो, वाकई दीन को प्रमोट करना चाहते हो, खराबी दूसरी ये भी पैदा हुई ना कि हम अपने नामों में उलझ चुके होते हैं, कई दफ़ा शख्सियात में उलझ चुके होते हैं, भाई मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक आपको पढ़ाती रहूँगी, ये तो कोई कमाल नहीं मैंने किया। कई लोग ऐसे हैं पिछले 20-20 साल से पढ़ा रहे हैं, हर शहर में ऐसी खूबसूरत शख्सियात मौजूद हैं, शहर के नाम के साथ लोग कहते हैं हाँ यार वो फलानी बाजी आपदा जी हैं, वो पिछले 20 साल से दर्स दे रही हैं, भाई बाजी आपदा जी ने क्या किया, उनका क्या हुआ, कहती बस वो क्लास लेती हैं, कोई जामिया बना नहीं, नहीं वो एक स्टूडेंट आई थी फिर उन्होंने बनाया फिर उनके मुकाबले पर एक जामिया बन गई। ये फितने आपने तो वो सुने ही नहीं जो हमने सुने हुए हैं कि एक मदरसे से अगर बच्चियाँ पढ़ के भी लिखती हैं तो उसी मदरसे की कोई एक टैलेंटेड बच्ची फिर बाद में अपना एक जामिया बना लेती है और वो फिर इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं, हमारे जामिया की बच्ची को आपकी जामिया ले गई, आपका बच्चा इधर आ गया, हमारे लोग उधर चले गए, हमारी रौनक ख़त्म हो गई, ये कोई दीन नहीं है। करते तो हम दीन की खिदमत है लेकिन अल्लाह हमारे ऊपर रहम कर दे। जब उस्ताद अपनी ज़िंदगी में अपने शागिर्दों को अपनी जगहों पर बिठा लेते हैं ना और उनको गलतियाँ करने का मौका देते हैं, करो गलती हमारे सामने हम पीछे खड़े हैं तुम्हारे, और जिसने कहते हैं मरते दम तक मेरी इस कुर्सी पे कोई नहीं बैठेगा, ये मसले आज हमारे दीन के, कुर्सियों पे सिर्फ उस्ताद बैठते हैं, हालांकि इसके लिए उस्तादों को सबसे पीछे बैठना पड़ता है ताकि पूरी क्लास को देखे कि कौन कहाँ क्या गलती करता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं फलौला नफरा मिन कुल्ली फ़िरकतिन, हर फिरके में से, फिरका और ताइफा यहाँ दो लफ्ज़ है, फिरका कहते बड़े गिरोह को फरीका से, और ताइफा कहते हैं छोटे गिरोह को, जमात कह लीजिए, हर बड़े गिरोह में से कुछ छोटे गिरोह वाले लोग निकलें, ली या तफक कहो फिर दीन, ताकि दीन की फिक हासिल करें। अब यहाँ लफ्ज़ फिक को भी आज समझ लीजिए, ये भी हमारे यहाँ बड़ा ही बेचारा मुश्किल लफ्ज़ है। जहाँ लफ्ज़ फिक आता है ना, हमारे जहन में इख्तलाफात आ जाते हैं, फ़िकी इख्तलाफात, इमाम अबू हनीफा की फिक, इमाम शाफी की फिक, इमाम अहमद की, दिस एंड दैट। हमारे यहाँ फिक से मुराद क्या ली जाती हैं, हुज्जतें, वैसे दीन के नमाज में हाथ कहाँ बांधो, किधर बांधो। हालांकि फिक का लफ्ज़ क्या है, समझ बूझ, ली या तफक्कहू फिर दीन कहा गया है, ये नहीं कहा गया ली या तअल्लमु फिर दीन। देखिए इल्म और फिक में फ़र्क होता है, इल्म के वाइड स्प्रेडेड है नॉलेज, फिक कहते हैं बेसिक्स की ज़िंदगी समझ आते। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे दूंगी कि एक शख्स 10 साल मदरसे में पढ़ता है, वो इल्म की बारीकियां समझ जाता है, ग्रामर, सर्फ, नहव, असूल हदीस, असूल कुरान, अकीदा समझ आता, इसको आप कहेंगे इल्म, ठीक है। लेकिन खुदा खौफी नहीं आई, तकवा नहीं आया, ज़िंदगी गुजारने का तरीका नहीं आया, डे टू डे लाइफ के ऊपर गौर नहीं कर पाता, तो आप कह सकते हैं कि इसके पास इल्म तो है, समझ बूझ नहीं है। फिक से मुराद क्या है, हर बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक दीन सीखे। मसलन नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, हम सबको आना चाहिए। आप माँ हैं, आपको इस्लामी हिसाब से बच्चों की तरबियत आनी चाहिए, पेरेंटिंग आनी चाहिए। आपके शौहर बिजनेस करते हैं ना, तो फिक वहाँ क्या है, उनको बिजनेस के डूज एंड डोंट्स बताऊँ। अगर आप अपनी बच्ची की शादी करने निकली हैं, तो आपको इस्लामी शादी के डूज एंड डोंट्स बताऊँ। अगर आपके घर बच्चा पैदा हुआ है, उसका अकीका कर रहे हैं, तो उसकी फिक बताओ। अल्लाह ताला कहते हैं हर बंदा आलिम नहीं बनेगा, ये बात जहन में रखिएगा। इल्म जैसे आप मिसाल है कि आप इस वक्त सीख रहे हैं भाई कि आपको लफ्जी तर्जमा सिखाया जा रहा है, आपको ग्रामर आगे सिखाई जानी है, आपको छोटी छोटी बातें सिखाई जा रही है। आप सबको हम कहते हैं कि आप 2 महीने पाकिस्तान में जा रहे हैं छुट्टियों में, आप ऐसा कीजिए कच्ची बस्ती में जाएं और उनको कुछ सिखा के आएँ, क्या करेंगी। अच्छा ऐसा करती हूँ कि मैं पहला पारा ले जाती हूँ लफ्जी तर्जमे वाला, और साथ उनके लिए मिफ्ताहुल कुरान ले जाती हूँ, ग्रामर की बुक, और साथ उनके पास जाती हूँ और उनको उसूल हदीस सिखाती हूँ। आप जाके उनको जाके कहेंगे ना वो सरफो नहब और वो दिस एंड दैट, वो कहेंगे भाजी ये क्या, ये कोई फसल का नाम है, ये कोई नया बीज है। जिन गरीबों को लिखना नहीं आता, जिनको पढ़ना नहीं आता, आपको क्या करना चाहिए, एक ऐसा प्लान बना के जाना चाहिए कि चले 2 महीने में नंबर एक मैं इनका अकीदा ठीक कर लूँ। किस तरह से, जो बेसिक बेसिक बातें हैं, और वर्बल याद रखिए, देहाती लोग, कम पढ़े लिखे लोग कापियों पेंसिलों से नहीं सीखते, वो वर्बल ज़्यादा बातें सीखते हैं, वो दुआएं सुन के याद कर लेते हैं। जिस दिन आप उन्हें कहेंगे लिखे मैं इसका लफ्जी तर्जमा लिखाऊं, वो भाग जाएंगी, उनको नहीं लिखना आता। तो लेवल लोगों का पहचान है, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके साथ कॉपी पेन काम करते हैं, लेकिन आम लोगों को बैठ के नमाज सिखा दें, कलमा सिखा दें, दुआएं सिखा दें, उनको हराम हलाल, तहारत, गुसल, वजू। अगर आप 2 महीने में एक गाँव में रहने वाली बच्ची को घर गृहस्थी से लेकर छोटी छोटी चीज़ों तक उसकी बेसिक सिखा के, अल्हम्दुलिल्लाह लियतफक्कहू फिद्दीन में ये काफ़ी है। अल्लाह उसको कभी मौका देगा इससे ज़्यादा सीखेगी, किसी मदरसे में जाएगी, फिर दीन इस्लाम की बारीकियाँ आएंगी, नो प्रॉब्लम। नबी सल्लम ने कभी सहाबा को बिठा के 10 साल का कोर्स नहीं कराया। लोग दूसरे ग्रुप से आते थे, यमन से आए, इसी तरह अबू हुरैरा आए, दूसरे रहते थे कुछ दिन, दीन की समझ बूझ लेते थे, चले जाते थे। एक शख्स नबी सल्लम के पास आया, कहने लगा अल्लाह के नबी सल्लम मुझे दीन सिखाए। आपने उसको नमाज, रोज़ा, हज, जो बेसिक चीज़ें ना वो सिखा दी। कहने लगा अल्लाह के नबी जो आपने कहा है ये कभी छोड़ूंगा नहीं और इसके अलावा कुछ करूंगा नहीं, समझ रहे, यानी सिर्फ फ़राइज़ पे जीऊँगा। जब वो वापस जा रहा था तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जो ये कह के गया अगर इसने किया तो ये जन्नती है। आप लोगों की रियायत करें, चले उन सब को भी छोड़ दें, अभी हमारे आपके हालात नहीं है गाँव में जाने के, आप अपने मर्दों की बात करें। जी मैं कोर्स कर रही हूँ, लफ्ज़ी तर्जमा पढ़ती हूँ, और मैं, आप भी मेरे साथ कोर्स करें, खोलें तर्जमे का पारा आप भी। मैं 3.5 घंटे 4 की क्लास लेती हूँ, आप ऑफिस से आते हैं घर बैठे, आप मेरे साथ भी आप इतना ही वक्त लगाएं। कुछ 5-10% तो ये कर लेंगे, सब के शौहर ये नहीं करेंगे। मर्द इतनी बारीकियों में जा ही नहीं सकते जितनी बारीकियों में आप जाते हैं। उनको आप क्या सिखाएं, उनको आप दीन की लियतफक्कहु फिद्दीन, स्पिरिट। मुझे जो इस दफ़ा समझ आया ना, लियतफक्कहु फिद्दीन, ये स्पिरिट ऑफ द रिलीजन है। वो झूठ ना बोलें, वो शराब ना पिए, उनकी गलत नज़रें ना हों, खुदा खौफी हो, तकवा हो, वो इस तरह से ज़िंदगी गुजारें कि जिसमें कोई हराम ना आ जाए। किसी के पास वक्त है, बिस्मिल्लाह, आप उनके साथ बैठें, आप भी तर्जमा पढ़ें, वो भी पढ़ें लिखें। कुछ लोग पूरा तर्जमा भी पढ़ जाते हैं, यतअल्लमून फिद्दीन, लेकिन लिया तफक्कहु फिद्दीन फिर नहीं हो पाते। जब ज़िंदगी में कोई अमली इम्तहान आता है, उस दिन फिर कहते नहीं मजबूर हैं आप, शादी तो ऐसे होनी है, आप घर तो ऐसे बनाना है, बच्चे को तो ऐसे लेना है। कितने लोग हैं, इल्मी बोझ बहुत लदा हुआ है, दीन की फिक नहीं है। जो चीज़ मुझे थोड़े से अरसे में समझ आई है वो यही आई है कि लिया तफक्कहु फिद्दीन क्या है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उख्रिजत लिन्नास, और 5 हकूक कुरान के, मेरी नज़र में लिया तफक्कहु फिद्दीन कुरान के 5 हक है। कल्लज़ीन यतलूनहु हक्क तिलावती, सूरह बकरा की आयत 120 या 121 है, कि जो लोग कुरान को उस तरह पढ़ते हैं जैसे उसका हक है, इस पर ईमान, इसको ठीक पढ़ना आ जाए, इसके ऊपर अमल, गौर व फिक्र, इसकी समझ आए, फिर अमल, फिर दूसरों को बताना, ये आम लोगों के दर्जे का काम है। तो दीन को इतने आसान तरीके पर लोगों को बताना चाहिए कि उनको अपनी ज़िंदगी का रास्ता समझ आ जाए। और नबी सल्लम की शादियाँ जितनी हुई थी ना, उसमें एक बहुत बड़ा राज क्या था कि मुख्तलिफ़ औरतों के ज़रिए मुख्तलिफ़ ख़ानदानों में इस्लाम गया था। उम्मे सलमा आपकी बीवी थी, अगर आप इनके इल्मी सहीफ़ों को जमा करें तो एक पूरी किताब बन जाती है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला से बहुत कम उम्र में आपकी शादी हुई, क्यों? अल्लाह चाहते थे एक औरत, चाहे उसको लोग बच्ची कहें, नबी की सोहबत में पले बड़े, और आपके बाद 48 ईयर्स तक हज़रत आयशा सिद्दीका ने सहाबा को इल्म दिया। हज़रत आयशा के स्टूडेंट्स ज़ाहिर मर्द थे ना, औरतें तो नहीं थी ना, हज़रत आयशा के स्टूडेंट्स की तादाद सबसे ज़्यादा। और कहते हैं कि आपका तर्ज़ तखातुब, खुतबा, दर्स, लेक्चर, कुछ भी कहें, अबू बकर और उमर और बड़े बड़े सहाबा से ज़्यादा आपके बात करने के अंदाज़ में वज़न था। अल्लाह दे देते, औरतों में वैसे भी चूँकि डेलिकेसी होती है, मर्द तो सीधी बात मारते हैं ना, उनको 2 घंटे की बात कहें ना तो 15 मिनट में करके आ जाते हैं। कल आपके सर ने भी ये किया, अल्हम्दुलिल्लाह, कल मर्दों का एक हलका शुरू हुआ, तो खैर पूछते क्या करें, ऐसे मशवरा करते हैं हम लोग। तो मैंने कहा आप उनको 5 राइट्स ऑफ कुरान के बता दें, पहला दिन है, तो मैं तो उनको थोड़ा सा बता रही थी, और मेरा ख्याल था कि एक राइट बता के कोई 5-6 मिनट उस पर बात करेंगे, फिर दूसरा बताएंगे, तो 5-5 करके 25 मिनट का दर्स तो यही तैयार है, इन्होंने 5 मिनट में सारे बता दिए। बहरहाल बहुत अच्छा किया, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो सिर्फ एक जोक है, मैं आपको बता रही हूँ कि मर्द बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। मैंने इन्हें कहा कि हम लोग क्लासेस के शुरू में सूरह फातिहा और इस तरह की चीज़ लगाते हैं ताकि माहौल बन जाए, तो वो 7 कारीज वाली तिलावत है, मैंने वो चला दी, मैंने देखा 6 मिनट की थी, मैंने कहा चलो शुरू में माहौल बनता जाएगा, इन्होंने एक ही कारी की लगा के बंद कर दिया। मर्द इतनी हैंकी पैंकीज नहीं कर सकते जो हम औरतें होती है ना, रोएं, बैठें, बातें करें, डिस्कशन, मर्द बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। तो आप अपने मर्दों को समझें क्या कमी है, बैठ के बात करें कि ठीक है मैं 18 मंथ का कोर्स कर रही हूँ ना, आप मेरे साथ बैठें और छोटी छोटी बातों पे हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है आप उनकी टीचर ना बने अभी, लेकिन कम अज़ कम डिस्कशंस के नाते से उनके साथ बात करें, आप देखेंगी कि आपकी बात बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। इसी तरह आपके बच्चे हैं, आजकल माशाल्लाह वो पढ़ रहे हैं, बच्चियाँ हैं, स्कूल गोइंग है, सब कुछ है। देखिए ये तो जुर्म है कि हम उनको नेकी की कोई बात ही ना कहें और सिर्फ उनकी दुनियावी तालीम की फ़िक्र करें, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं। जिस तरह दुनिया हम उनको सिखा रहे हैं, दीन भी हमने सिखाना है। वो किसी बात पे भी आपको कह देते हैं नहीं पढ़ना है, पढ़ना, तो आप उनसे बैठ के एक दिन बात कर लें, ये बताओ इस चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं है। ये कभी नहीं होगा कि एक नई ज़िंदगी उनको फिर मिलेगी जिसमें आप उनको दीन सिखाएंगी। हाँ इस लेवल पे ठीक है, आपके बच्चियाँ मिसाल है आपके इस कोर्स में नहीं आ पाई, 18 मंथ का कोर्स कर सकी, तो बैठ के उनके साथ निगोसिएशन करें कि ये बताओ कि तुम्हारी नमाज, रोज़ा, ये सब चीज़ें, और सिर्फ इल्म नहीं, स्पिरिट, रूह, जिससे दिल में मोहब्बत आती है, आप इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें कि उनको दीन भी सीखना है। देखिए फुल टाइम नहीं सीख सकते अभी, लिया तफक्कहु फिद्दीन, अगर आपका ये रोग बनता जा रहा है कि मेरे मरने के बाद कल क्या होगा, तो उनको भी तो फिक्र होनी चाहिए हमारा क्या होगा। इस वीक में अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 छोटी-छोटी कोशिशें अल्लाह ने करवा दी कि एक हमारा सैटरडे को हल्का शुरू हुआ मदर डॉटर्स का सदा फीसा के घर में, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग थे, बच्चियाँ भी थीं, और कहा कि और बच्चियों को भी नेक्स्ट वीक लेके आएँ कि माँ बेटी एक जगह बैठते हैं तो कम अज़ कम 7 वक्त तो अच्छा गुजरता है। फिर ये ब्रदर्स का हल्का संडेस को शुरू हुआ, नेक्स्ट वीक हज़रत उमर किसी को दुकान नहीं खोलने देते थे जब तक उसको नबी सल्लम की हदीसों में से तिजारत की बातें नहीं पढ़ा लेते थे। और लाल्लहुम यहज़रून से ये पता चलता है कि फिर वो बच भी जाएंगे। आप ये मत सोचें कि ये खानापुरी के लिए होगा, बल्कि फ़र्ज़ है कि होगा। और इंशाल्लाह इससे आप देखेंगे कि ये चीज़ें फिर घरों का माहौल बदलेंगी। इसी तरह आप अपने बच्चों को ट्रेन करें। क्या आपके बच्चे कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ दूसरे मुस्लिम बच्चे मिलते हैं बिगड़े हुए, आपके बच्चे उनके दाई बनेंगे। ये बिल्कुल ऐसे फैलेगा जैसे मैंने शुरू में एक मिसाल आपको दी ना कि दिल है। आप सोचिए कि दिल से पंप होती है ब्लड। अब दिल के करीब जो पाइप्स होती हैं ना वो मोटी होती हैं, इतनी मोटी पाइप होती है, ठीक है। अब वो दिल से आपके इधर उधर जा रही है, खून तो सारे जिस्म को पहुँचाना है। अगर मैं कहती हूँ कि ये मेरी छिंगली उंगली जो है इसमें भी खून पहुँचाना है, तो वो दिल की पाइप तो इसमें पूरी कोई नहीं आनी। इसके लिए अल्लाह सुब्हान तआला ने बॉडी के अंदर आर्टरीज़ का निज़ाम फैलाया हुआ है। किपलरीज से अगर आपने सुना होगा, मोटी होती हैं फिर पतली और बिल्कुल आखिर में एक जाल फैल जाता है। ये इल्म का तरीका है। बड़े उलमा से, दीनदारों से फोकस्ड होके फुल टाइम कुछ लोग सीखें और उसको फिर इर्द गिर्द फैला दें। यानी अब हम सब के घरों में कोई ना कोई छोटी छोटी कोशिश शुरू हो जानी चाहिए। हर बंदा आपके स्कूल में आके नहीं पढ़ेगा, फुल टाइम नहीं पढ़ेगा। आपको तो ये 4 दिन भी कम लगते हैं ना, उनको नहीं कम लगते, उनको ज़्यादा लगेंगे अभी। इसके लिए आपने इंशाल्लाह कोशिश करनी है, और जितनी ज़्यादा आपके अंदर पुख्तगी आएगी अल्लाह ताला आपके लिए उतना आसान कर देंगे। ये तो हो गया इस आयत का खुलासा। अब हम चलेंगे अगली आयतों पर, और इस पर कल थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। आप सोच के आइएगा कि प्रैक्टिकली इसके क्या सिचुएशंस हैं। अब आखिरी आयतें हैं सूरत की 123 से 129। मैं सिर्फ इसका एक खुलासा करूँगी, कल हम आखिरी हिस्से पर थोड़ी सी बात करेंगे। ग़ज़वा तबूक पे तबसरा ख़त्म, यानी ये जो आखिरी आयतें थी समझें जब भी हमने पढ़ी हैं, ये ग़ज़वा तबूक के ऊपर अब आखिरी कमेंट्स थे। अब आप देखिएगा कि नबी सल्लम को अपने साथियों से कितनी मोहब्बत थी, इसका तरीका क्या है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए लोगो जो ईमान लाए हो, क़ातिलुल्लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़ार, जंग करो इन काफिरों से जो तुमसे करीब हैं, और वल यजिदु फीकुम ग़िल्ज़ा, वो तुम्हारे अंदर सख्ती पाए। इसमें इशारा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत अब बैनुल इक्वामी दावत बन रही है। आपने पीछे ही पढ़ लिया कि इस्लाम की सरहदें फैलती जा रही थी, इस्लामी हुकूमत अब तबूक तक पहुंच रही है। शुरू में मीठा मीठा प्यार प्यार कह दिया, बहुत कुफ वाई दिया कुम हो गया, 13 साल खूब मारे खा ली। अब क्या होगा, जो तुमसे लड़ता है तुम भी लड़ो। यलू नकुम, तुम्हारे करीबी लोगों तक बात करो। यहाँ से पहली बात तो ये पता चलती है कि करीब वालों से दावत का आगाज़ करना चाहिए। इसी तरह किताल या जंग की नौबत भी आएगी ना, तो करीब के दुश्मनों से पहले निपटना है। भाई जिस दुश्मन से आपकी सरहदें मिल रही हैं उसको आप कुछ ना कहें, दूर के दुश्मन से आप टक्कर जाके ले लेते हैं तो करीब वाला आपको आके खा जाएगा ना। यानी यहाँ मुसलमानों की खारजा पॉलिसी भी बताई गई है कि जिन मुल्कों की सरहदें गैर मुस्लिम मुल्कों से मिलती हैं उनके साथ आप अपनी फौजें तैयार करें, आप वहाँ मार्च पास करें, वहाँ से सब कुछ होना चाहिए ताकि लोग इन सारी चीज़ों को ले, करीब के लोगों से पता चले, सोच समझ के काम करें। हर जिहाद जिहाद नहीं होता, दूर वाले दुश्मन को छेड़ लेंगे ना तो पास वाला आके आपको उससे पहले खा जाएगा, तो ये एक इंसान की बात है। और इसी से इशारा है कि अगर हम इसको अमर बिल मारूफ वाला जिहाद कहें तो हमेशा अपने करीब की फिक्र करें। आप समर गई हैं, अब आपके बच्चे, आपके शोहर, आपके ससुराल, फिर होते होते आपके दूर के हमसाए और इस तरह करते कराते दूसरी तरफ जाएँ। पीछे हम पढ़ चुके हैं आयत नंबर 39 में सूरत अनफाल में, वकातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुम व यकून अद्दीन कुल्लुहु लिल्लाह, कि तुम उनसे लड़ाई करो यहाँ तक कि फितना ना हो और दीन सारे का सारा अल्लाह का हो जाए। तो कुफर और शिर्क के खात्मे के लिए भी लड़ाई होगी, और अगर कोई आपको छेड़ता है, मुसलमानों के ऊपर कोई हमले करता है, तो उसके साथ भी ऐसा ही होगा। खौफ आता है, हाय हम मुसलमान काफरों से लड़े, तो कहा वालम अल्लाह माल मुत्तकीन, जान लो कि अल्लाह मुत्तकियों के साथ है। मतलब क्या है कि अगर तुम्हारे अंदर तकवा होगा तो दुश्मन हिरकल से भी बड़ा क्यों ना हो जाए, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। मदद तकवा के साथ आती है, फौज के साथ नहीं आती। फिर आगे फरमाया, मोमिन और मुनाफिक की कुरान सुनते वक्त कैफियत, आयत 124, व इज़ा मा उन्ज़िलत सूरतुम फमिन्हुम मन यक़ूलु अय्युकुम ज़ादतहु हाज़िहि ईमाना, और जब कोई सूरत नाजिल होती है तो इनमें से बाज़ मुनाफिकीन आपस में कहते हैं, कि इसने तुम में से किसके ईमान में इजाफा किया। फिर फ़ामल्लज़ीना आमनु फ़ज़ादतहुम ईमानुहुम वहुम यस्तबशिरून, तो जो लोग वाकई ईमान वाले हैं वो इनके ईमान में तो यकीनन इजाफा करती है और वो खुशियाँ मनाते हैं। इसके बरक्स आयत 125, वअम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, रहे वो लोग जिनके दिलों में रोग है, फ़ज़ादतहुम रिजसन इला रिजसिहिम, तो वो इनके अंदर की गंदगी पर मज़ीद गंदगी का इजाफा करती है। वमातू वहुम कुफ़काफ़रीन, और वो इस हाल में मर जाते हैं कि वो कुफर पे होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि जब भी कुरान पाक नाजिल होता तो आप उस कुरान के हिस्से को खुद याद करते, आपको याद हो जाता था, ये अल्लाह सुब्हानहु तआला की एक मदद थी आप पर। उसके बाद आप उस कुरान को अपने इर्द गिर्द वाले लोगों से शेयर करते थे, ठीक है। अब जब कुरान आप दूसरों को सिखाते पढ़ते तो उसका नतीजा क्या निकलता कि वो लोग जिनके दिल में इस्लाम की मोहब्बत थी वो इस पे खुशियाँ मनाते, वो बड़े गौर से सुनते, गर्क होते, जबकि मुनाफिकीन का रंग ढंग कुछ और था। वो जाते तो आपके पास सिर्फ इसलिए थे कि हाजिरी का हुक्म था, ना शामिल होंगे तो मुनाफ़िकत का राज खुल जाएगा, मगर उनको उन हदीसों से, उन आयतों से कोई दिलचस्पी नहीं होती थी जो अल्लाह के नबी की ज़ुबान से आती। नहायत बददिली से उकताए हुए बैठते और अपने आप को बस हाजरीन में शुमार करते, फिक्र ये लगी रहती थी कि जल्दी से यहाँ से भाग जाएं। अल्लाह सुब्हान तआला ने इनकी यहाँ तस्वीर कशी की कि इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि हमारी अपनी फलाह है इसमें, हमारी अपनी खैर है, कितनी बड़ी नेमत है जो इस कुरान और इस पैगंबर के ज़रिए से इनको मिल रही है, और अपनी छोटी सी दुनिया और उसकी घटिया किस्म की दिलचस्पियों में ये इतने गर्क हुए हैं कि ये खूबसूरत गाइडलाइन छोड़ के दुनिया के कामों में पहुँचते। और ये कुरान था जिसने अरब के रेगिस्तानों से लोगों को उठाया और पूरी दुनिया के इमाम बन गए। तो पता क्या चला कि कुरान आपके मेरे साथ वही मामला करेगा जो मैं और आप कुरान के साथ करेंगे। हम इससे प्यार करते हैं, ये हमसे प्यार करता है, हम इसको मोहब्बत देते हैं, ये हमसे मोहब्बत करता है, और सोन। इनके इस निफाक की अल्लाह सुब्हान तआला ने एक तस्वीर खींची आयत 125 में कि इनको क्यों नहीं समझ आता कि ये अल्लाह का नबी इनके लिए रहमत बन के आया है। आयत 126, अवला यरून अन्नहुम युफ्तनून फी कुल्ली आमिन मर्रतन औ मर्रतैन, क्या ये मुनाफिकीन देखते नहीं हैं कि हर साल इनको आजमाया जाता है, एक बार या दो बार। ये कैसी आजमाइशें होती थी? लड़ाइयाँ और वबाएं, कभी किताल, कभी आजमाइश। मुनाफिकों का इम्तिहान होती है ना हर जंग, नेकी के मौके मुनाफिक की आजमाइश है। अल्लाह कहते हैं कैसे लोगों को हर साल एक दो दफ़ा बुलाया ही जाता है इन कामों पे, लेकिन इनको समझ नहीं आती। ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون, फिर ना तो ये तौबा करते हैं और ना ही नसीहत लेते हैं। मतलब यह है कि मुनाफिक से अगर नेकी का एक मौका छिन जाता है ना, अगला भी छोड़ देता है, एक नेकी छूटी दूसरी भी छोड़ देता है, और हर नेकी के छूटने पर अगली दफ़ा नीयत करता है कि आइंदा नहीं छोड़ूंगा, फिर उससे छूटता है। हालत क्या होती है इनको, वही चीज़ अब आगे बढ़ रही है। 127, वह इज़ामा उन्ज़िलत सूरतुन नज़र बादुहुम इला बाद, और जब कोई सूरत नाजिल होती है तो ये लोग आपस में एक दूसरे को देखते हैं, यानी किताल का कोई हुक्म आता है, कोई मुश्किल नेकी सामने आ जाती है, तो मुनाफिकीन का नखियों से एक दूसरे को इशारे करते थे और क्या कहते थे एक दूसरे को दिल ही दिल में, हल यराकुम मिन अहद, क्या तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं। जब ये नहीं होता सुम मन सरफ, फिर वहाँ से खिसक जाते थे। देखिए जिस जगह दिल नहीं होता ना, फिर ज़्यादा अरसा वहाँ जिस्म भी नहीं रहता। मुनाफिकों के दिल नबी की महफिल में नहीं होते थे, मुश्किल आयतों पे, मुश्किल हुक्मों पे कनखियों से एक दूसरे को इशारा करते थे चलो, और निकल जाते थे, और निकल कर खुश होते थे, हालांकि सरफ अल्लाह कुलूबहुम, दरअसल अल्लाह ने इनके दिलों को फेर दिया। अल्लाह कितने बदनसीब हैं, नबी की महफिल से सूखे निकले। क्यों? बिअन्नहुम कौम ला यफ़क़हून, जैसे लोग हैं जो समझ नहीं रखते। यही है वो बात जो लिया तफक्कुहून थी। जब दीन की रूह पैदा नहीं होती ना बंदे के अंदर, तो दीन के लिए वक्त देना मुश्किल लगता है, फिर उस महफिल से निकलने को खुशी समझते हैं। अल्लाह हमें ऐसे लोगों में ना करे। और इसके बाद अब आखिरी दुआएं, ना सिर्फ ये कि सूरत की आखिरी, بلکہ قرآن پاک کی عظیم ترین آیت ہے. میں صرف ترجمہ پڑھوں گی, کل میں اس پہ تھوڑی سی بات کروں گی. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. اے لوگو دیکھو, آ چکا ہے تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول, بہت بھاری گزرتی ہے آپ پر تمہاری تکلیف. یہ نبی تمہیں مشکلوں میں دیکھ کر خوش تھوڑی ہوتے ہیں, تمہیں کٹتے پھرتے, دھوپ میں جاتے, پیاس سہتے, پیدل چلتے دیکھ کر کوئی خوشیاں تھوڑی مناتے ہیں. تکلیف ہوتی ہے, لیکن ان تکلیفوں کے باوجود تمہیں یہ نہیں کہتے کہ چھوڑ دو, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس میں تمہاری خیر ہے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, تمہارے حق میں آپ بھلائی کے بہت حریص ہیں, اہل ایمان کے لیے شفیق بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. یعنی نبی کا معاملہ اپنی امت سے محبت کا معاملہ ہے, جبر کا نہیں. کسی کرسچن نے مسلمانوں کو اسلام سے متنفر کرنے کے لیے کہا, ہمارا نبی ہم سے تمہارے نبی کی نسبت زیادہ پیار کرتا ہے. کیسے؟ کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے گناہوں کے لیے ذبح کر دیا, نعوذ باللہ, حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ. اور تمہارا نبی تمہارے بیٹوں کو لے جا کر میدان جنگ میں کٹواتا ہے. حالانکہ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی تھی. کئی واقعات ہیں کہ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اپنے صحابہ کی حالت دیکھ کر, کیفیت دیکھ کر. اس کے باوجود کبھی یہ نہیں کہا کہ چھوڑ دو. اس پہ کل بات کریں گے کہ اصل حرص کیا ہے. یہ آیت آپ کو سکھائے گی کہ آپ کا معاملہ آپ کے بچوں کے ساتھ کیسا ہو. محبت کے نام پہ کیا کریں ان کو, ہائے نہیں میرے بچے سوتے ہی رہو, فجر چھوڑ دو کیونکہ تمہارے آگے ایک بڑا لمبا دن ہے, ابھی اور ہی سو جاؤ, بس سن رائز سے 5 منٹ پہلے اٹھ کے پڑھ لینا, پڑھ سکتے ہیں نا. یہ نہیں کہنا. اصل حرص کیا ہے کہ یہ آگ سے بچ جائیں. آخری آیت 129, فإن تولوا, پھر بھی اگر یہ لوگ رو گردانی کریں, کس سے؟ سب چیزوں سے, دین سے, نبی سے, جہاد سے, تبوک سے, قرآن سننے سے, سیکھنے سے, تو آپ دل میلا نہ کریں. آپ کہہ چکے آپ کی حرص ان کو پتہ لگ گئی ہے. آپ بس ایک کام کہیے کہ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ, میرے لیے اللہ کافی ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ, اسی پر میں نے توکل کیا اور وہ بہت بڑے عرش کا مالک ہے. بندہ مومن کا سہارا اللہ ہوتا ہے, اس کو اللہ کافی ہوتا ہے. وہ دوسروں کی آس پہ کبھی کوئی کام شروع نہیں کرتا اور نہ چھوڑتا ہے. ساتھیوں سے امید تو ملتی ہے, تسلی تو ہوتی ہے, لیکن کام تبھی ہوگا جب اللہ پہ توکل کریں گے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ سورت توبہ ہمارے توکل اور اللہ پر یقین میں اضافہ کر دے. کچھ چیزیں انشاءاللہ اس پہ کل دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.